हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा है और एकदम अनोखा। वसुंधरा ने ऐसा कोई भी शख्स आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। देखना तो दूर की बात, उसने ऐसे किसी इंसान के बारे में सुना भी नहीं। लेकिन फिर भी वसुंधरा को उसके आसपास से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा है और ना ही वसुंधरा को उससे कोई डर लग रहा है। जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने अभी अभी वसुंधरा की मदद की है और उसे उस जगह से निकाला है जहां पर वो पता नहीं कितने वक्त से कैद थी। वसुंधरा ने तो वहां से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें ही पूरी तरह से खो दी थीं। उसे लगा था विक्रांत के रहते वो वहां से कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि विक्रांत खुद भी उसे ये बात बोल चुका था। लेकिन आज पता नहीं गलती से या जानबूझकर जैसे भी विक्रांत ने उसे इस तरह से खोला छोड़ दिया। और इसी बीच वसुंधरा को मौका मिला और ऐसे में इस अनजान मददगार का आना, वसुंधरा मन ही मन भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही है कि भगवान ने उसकी मदद के लिए एकदम सही टाइम पर ऐसे किसी फरिश्ते को भेजो और वो देखने में सच में किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा है। धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, लेकिन आप हैं कौन और यहाँ पर? वसुंधरा ने आखिर बोलना शुरू किया और वो अभी भी उसकी तरफ रानी से देखकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रही है। हम तो बस आपकी मददगार हैं, आपको हमारी मदद की जरूरत थी तो बस आपकी मदद के लिए ही यहाँ पर आ गए। इस तरह एकदम हल्के मुस्कुराहट के साथ वसुंधरा की तरह देखते हुए वो शख्स बोला, नहीं, मेरा मतलब है आपका नाम और अब यहाँ पर आ रहे कैसे? क्या आपको भी वो विक्रांत यहाँ पर लेकर आया था? वसुंधरा ने बहुत ही मासूमियत से दोबारा ये सारे सवाल किया, क्योंकि उसकी कही बातों का मतलब वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है। नहीं, हमें कोई भी लेकर कहीं भी नहीं आ जा सकता, हम अपनी मर्जी से ही कहीं भी आते जाते हैं और अभी हमने आपकी मदद की पुकार सुनी इसलिए आपकी मदद करने यहाँ पर आ गए थे। वैसे आप यहाँ पर कैसे आए और विक्रांत ये कौन है? उस आदमी ने उसी तरह एकदम नरमी और सहूलियत से बात करते हुए कहा। इसके अलावा उसने अभी भी वसुंधरा का हाथ पकड़ा हुआ है और वसुंधरा ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सारी बातें इसी तरह से कर रहा था कि वसुंधरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो काफी उलझन से उसकी तरफ देख रही है। हाँ, लेकिन अभी हम कहाँ पर हैं? वहाँ यहाँ पर तो कोई भी गुफा नजर नहीं आ रही है और मैं यहाँ पर कैसे आई? जहाँ तक मुझे याद है वहाँ गुफा में एक बहुत ही तेज रोशनी हुई थी जब मैं आपका हाथ पकड़ा और फिर अपने आंखें बंद की। उसके बाद फिर मैं आंखें खोली तो मैं यहाँ पर और आप मेरे सामने। वसुंधरा ने फिर से उसे सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी से सवाल करते हुए कहा। हाँ, मैंने ही आपको वहाँ से बाहर निकाला है और आपने मुझे अभी भी नहीं बताया कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचे। खैर, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी भी यहाँ पर खतरा है, इसलिए आप मेरे साथ लिए मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा देता हूँ। उस आदमी ने वसुंधरा का हाथ पकड़कर ही उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने साथ चलने को कहा और वसुंधरा के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। इसके अलावा उसे आदमी ने अभी अभी उसकी मदद की है तो ना चाहते हुए भी वो उसे पर विश्वास कर रही है, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। वसुंधरा को समझ नहीं आ रहा कि वो उसे अपने बारे में क्या बताए और क्या नहीं, लेकिन दोबारा उसने भी रास्ते में कुछ नहीं पूछा और वो दोनों एकदम चुपचाप बिना कुछ बोले ही चल रहे हैं। वो आगे चल रहा है और उसका हाथ पकड़कर वसुंधरा उसके कुछ कदम पीछे पीछे। वो दोनों जैसे जैसे वहां पहाड़ी से दूर जा रहे हैं, वसुंधरा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और तभी एकदम से उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ आकर गिरा और वसुंधरा चहक उठी और वो आदमी जो आगे चल रहा था वो भी अपनी जगह से पीछे हो गया, क्योंकि वहां से आगे जाने का रास्ता उस बड़े से पेड़ की वजह से पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन इस वक्त वहां पर कोई भी आंधी नहीं आ रही थी, ना कोई तूफान। ऐसे में उस बड़े से पेड़ का अचानक रास्ते पर गिरना कुछ तो गलत था। इतना उन दोनों को समझ आ गया। उस पेड़ को देखकर उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने गहरी सांस ली और तुरंत ही वहां से पीछे होते हुए वो दूसरी तरफ मुड़ गया। लेकिन तभी उसे तरफ एक एक करके बहुत सारे पत्थर आए और एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए काफी ऊंची दीवार में बन गए। इतना करते हुए फिर वो जैसे दूसरी तरफ मुड़ा, वहां पर काफी सारी हड्डियां और कंकाल नजर आने लगे और चौथी तरफ से बाहर निकालने की कोशिश की तो वहां पर सूखे पेड़ के पत्तों में आग लग गई, जिसकी वजह से वो पूरी जगह एकदम ही बंद हो गई। वसुंधरा उस आदमी के साथ वहां पर उसे जगह पर फंस गई और वो दोनों अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे हैं। तभी उस आदमी की आंखों का रंग बदलता नजर आया, जहां पर अभी उसे सफेद रोशनी की चमक थी और आंखों में भी उसके एक नरमी और अच्छाई नजर आ रही थी, उसकी जगह गुस्से ने ले ली और गुस्से में वो चिल्लाता हुआ बोला, क्यों कर रहे हो ये सब? तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम चाहकर भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाओगे और मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। उसे आदमी के इतना बोलते ही वहां पर एकदम तेज आवाज गूंजी, तुम्हारा रास्ता मैंने पहले ही रोक दिया है और वैसे भी शुरुआत तुमने की है, क्यों आए तुम मेरे इलाके में? तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद कोई भी मेरे इलाके में मेरी मर्जी के बिना प्रवेश करे, लेकिन तुमने ये हिम्मत की और क्यों की है वो भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए छोड़ दो राजकुमारी को। वो आवाज सुनते ही राजकुमारी ने अपने सिर पर हाथ मारा और वो समझ गई कि वो फिर से फंस चुकी है। वसुंधरा अब तक इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा तंग आ गई है, इसलिए उसने सामने लगी हुई आग की भी बिल्कुल परवाह नहीं की और आगे बढ़ते हुए वो बिना डरे वो उन आग की लपटों की तरफ ही बढ़ती जा रही है। तभी उसके पीछे खड़े उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने जैसे ही देखा, वो भी वसुंधरा के पीछे है, उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, रुक जाइए, नहीं तो आप जल जाएगी, ये आग कोई सामान्य नहीं है, ये इस शैतान ने लगाई है हम दोनों को जलाकर मारने के लिए। दोनों को नहीं, सिर्फ तुझे देवांग, क्योंकि सीधे विक्रांत से पंगा लेकर तूने इस बार बहुत बड़ी गलती की है। विक्रांत ने यह बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और जिस तरफ से ये आवाज आ रही थी वसुंधरा तुरंत ही उसे तरफ मुड़ी और वो भी गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाती हुई बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जाने दो मुझे, मुझे वैसे भी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तूने ही इन सब की शुरुआत की। कैसे? तू मेरी गुफा के अंदर आया और राजकुमारी को अपने साथ ले जाने की तेरी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई? गुस्से में अपने दांत पीसते हुए विक्रांत उन लोगों की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन वसुंधरा उसे आदमी के आगे आगे जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी और विक्रांत और उसके बीच में आई हुई बोली, क्यों कर रहे हो ये तुम? जान लो, ले लोगी क्या इनके हाथ? हमारे लिए कौन सी नई बात है, लेकिन मेरे लिए किसी को भी तकलीफ मत पहुंचाओ। और क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे जाने दो यहां से। एकदम रोते हुए और विनती करते हुए वसुंधरा ने सामने देखकर ये सवाल पूछो, उसकी आंखों में तो नहीं देख पा रही है क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ नजर आ रही है।
तुम्हें पता भी नहीं है कि ये तुम्हारे साथ क्या करने वाला था? कौन है ये? कुछ जानती हो इसके बारे में? और इसके साथ जा रही हो बस ऐसे ही? धमकी भरी आवाज में विक्रांत ने बोलते हुए वसुंधरा को ये पूरी बात बताए। उसकी बात पर वसुंधरा ने उलझन से इधर उधर देखकर पीछे खड़े उसे आदमी की तरफ जो किया, अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक तरफ का रास्ता खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी उसने एकदम ही बाहर से ऊंचे से बनी हुई दीवारों को एक झटके में तोड़ दिया और वसुंधरा से बात करते हुए विक्रांत का ध्यान भी उसे तरफ नहीं है तो वो तुरंत ही वहां से बाहर निकाला और उसने वसुंधरा का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी तरफ से ही खींच लिया। उसके इस तरह से हाथ पकड़ते ही विक्रांत को बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने तुरंत ही अपनी शक्तियों से उसे पर हमला किया। और देवांग इन सारी चीजों से बचकर तो निकल सकता है, लेकिन वो निकालना नहीं जाता और वो वसुंधरा की तरफ देखता है और तुरंत ही आकर उसका एक हाथ पकड़ लेता। इस वक्त वसुंधरा का एक हाथ विक्रांत ने और दूसरा हाथ देवांग ने पकड़ा हुआ है। क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाथ हाथ छोड़ो मेरा। इस बार उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने भी उसका हाथ पकड़ा तो वसुंधरा को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हुआ। इससे पहले भी उसे अजीब सा तो फील हुआ था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। और दूसरा हाथ उसका विक्रांत ने पकड़ा हुआ है तो उसे तरफ देखकर वसुंधरा ने कहा, मार डालो मुझे, इससे अच्छा तो मुझे जान से मार डालो, ये कैद जिंदगी जीने से तो बेहतर होगा। नहीं मार सकती, तुम्हारी जान बहुत ही कीमती है और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा कीमती है। विक्रांत के हाथ की पकड़ उसकी कलाई पर और भी ज्यादा कस गई और उसे जवाब मिला, ऐसे ही किसी पर भी भरोसा कर लेती हो जान बचाने के लिए? जिसने भी मदद कर दी, जब उसका असली मकसद पता चलेगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। वसुंधरा का हाथ कसकर पकड़कर उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींचते हुए विक्रांत अपने आत्म ही वसुंधरा से बात करते हुए बोला। और इस बीच विक्रांत ने एक बार भी चेंज नहीं किया, उसे आदमी की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी और वो समझ गया कि वसुंधरा उसकी बातें सुन रही है। शायद सारी तो नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सब वसुंधरा के कान में तो पड़ ही रहा है। कुछ भी मत बोलो, जिस तरह से तुम मुझे तकलीफ पर जाना चाहते हो सारे लोग उसे तरह के नहीं हैं। और क्यों मुझे ले जा रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो। वसुंधरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देख कर तभी पीछे से एक तेज आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी और वहां पर गूंजी, चुप करो,
तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और वो कोई देवदूत नहीं है। उसके असली जब तुम्हारे सामने आएगी ना, तुम वो बात बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है। नमस्ते में विक्रांत ने अपना सर दूसरी तरफ घूम लिया और वो तुरंत ही एकदम वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही वो सारी चीज जो उसके जादू के जोर से वहां पर नजर आ रही थी, वो सभी एक एक करके गायब हो गए। लेकिन शायद किसी और ने इस तरह से उन दोनों का गायब होना नहीं सोचा था, इसलिए गुस्से में उसने अपने बाल कसकर पकड़ लिया और बोला, क्यों वसुंधरा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसे सफेद कपड़े वाले आदमी ने बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर सभी एकदम ही सहम गए हैं, और सबसे ज्यादा तो वो खुद ही एकदम अजीब सा डरावना लग रहा है। और वहां घुटने के बाल वो जमीन पर बैठा हुआ, उसकी तेज आवाज और चिल्लाने की चीख सुनकर वहां के जानवर, पक्षी और आसपास जो कोई भी है, सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ। नहीं विक्रांत, नहीं, तुम इस बार फिर से जीत नहीं सकते, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम बाकी लोगों को बाहर आ सकते हो, लेकिन देवांग को नहीं। एकदम से अपना सिर ऊपर उठाते हुए वो आदमी बोला, और इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था। 500 का छोटा सा एपिसोड, लेकिन कल हम जरूर बड़ा लिखेंगे और काफी कुछ दिखाएंगे भी। लेकिन अभी क्या लगता है आप लोगों को, देवांग सच में कोई देवदूत है या फिर कोई और? कहां ले जा रहा था वो वसुंधरा को अपने साथ?